Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paramashuddhaya Pratasmaraniyo Prempuri Ashram Ke Adishthata अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय परमादरणीय महाराज श्री के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान की श्रवणात्मिका साधना का अनवरत अनुष्ठान करने वाले भगवान के परम भक्तगण, श्रोताजन, साधकजन, बड़े ही सौभाग्य से हम लोग प्रेमपुरी के इस पवित्र प्रांगण में विराजित होकर कठोपनिषद का श्रवण कर रहे हैं। बालक नचिकेता का जीवन बड़ा ही उच्च कोटि का आध्यात्मिक साधक का जीवन है। जीवन में मांग हमारे जीवन की पहचान होती है। मांग से ही मालूम पड़ता है कि हम क्या है। हमारा जो होना है वो हमारे मांग में ही हमारा होना है। यहां बालक नचिकेता भी क्या मांग रहे हैं। हम साक्षात कोई देने वाला हो उस समय क्या मांगते हैं, ये बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं लेकिन अपने को मालूम है कि ये मिलने वाला नहीं है, इसलिए भी हम चाहते हैं। हम कई बार इसलिए भी चाहते हैं। आप कई बार ऐसा कहते हैं कि नहीं, ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के महात्मा बन जाए। आप इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि छूटना तो है नहीं और वैराग्य में होना नहीं है। और सचमुच कोई साधु बोले कि मैं अभी तुम्हारा छुड़ा देता हूं, ये लो जड़ी बूटी खा लो, और खाते ही तुम संसार को भूल जाओगे, तो आप खाओगे? कोई मंत्र दे और बोले कि 3 दिन तक जपो, सारी आसक्ति खत्म हो जाएगी, अपने बाल बच्चों से प्रेम खत्म हो जाएगा, घर से प्रेम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर दंड कमंडल लेकर हमारे साथ हो जाओगे, तो आप ईमानदारी से उस मंत्र का जप करेंगे क्या? मुश्किल है। हम कई बार इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि अपने को मालूम है कि वो मिलने वाला ही नहीं, और हम ऐसे ही अनौपचारिक रूप से उस मांग को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सत्य ही हमारे सामने वो मांग पूरी होने वाली हो। एक आपने घटना सुनी होगी, एक कोई लकड़हारा व्यक्ति था और वो बहुत बड़ा बोझ लकड़ी का लेकर के कहीं जा रहा था। थका हारा, पसीना पसीना हो रहा था, गर्मी का दिन, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ करके इतना दुखी हुआ और वो बोल पड़ा कि कितना अच्छा होता मृत्यु आ जाती। और वो जो पेड़ था वो कल्प वृक्ष था, सचमुच मृत्यु आ गई और सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु तुमको ले जाने के लिए आई हूं और तुमने मुझे बुलाया है। तो बड़ा तेज था लकड़हारा, वो समझ गया कि ये तो आ तो गई है ले जाने के लिए, अब क्या करूं। तुरंत उन्होंने कहा अच्छा हुआ बोले आई, लेकिन पहले मुझे पूछ तो लो कि तुमको बुलाया क्यों है। मैंने तो यही बोला ना कि मृत्यु आती तो अच्छा होता, लेकिन कम से कम पूछ तो लो कि कुछ क्या काम है, किस लिए बुलाया। मृत्यु ने कहा किस लिए बुलाया। अरे बोले कुछ नहीं, ये लकड़ी का गट्ठा थोड़ा सिर पर उठा लेता। मैंने अरे उठाऊं कैसे, इतना बड़ा रख तो दिया लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया। और ये लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखो और चलती हो जा। तो कई बार आदमी बोल भी देता है ना कि मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि आपने को मालूम है मरना तो है नहीं। वास्तविक जो मांग है वो है जहां आपके सामने खड़ी है वो वस्तु, और आपको मिलना है, तय है, और उस समय आप मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। ये अर्जुन के जीवन का भी बड़ा सुंदर दृष्टांत, सामने है राज्य और वो एक अक्षौहिणी सेना विजय, और उसके बाद भी अर्जुन ने नहीं मांगा, अर्जुन ने भगवान को ही मांगा। वास्तविक मांग थी वो, क्रियात्मक। अब वहां बिल्कुल लेट लपेट नहीं है और दूरी भी नहीं है, बिल्कुल तुरंत मिलने वाली चीज है। तो हमारे जीवन में भी वही वास्तविक भाव होता है जो क्रिया में उतरने वाला है, और उस समय जो है हम बालक नचिकेता के सामने आचार्य यम है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जो चाहे वो दे सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि मांगो तुमको क्या चाहिए, तीन वरान वृणीष्व। और उस समय उन्होंने मांग लिया अपने पिता के लिए। आदमी में समय पर बुद्धि नहीं आती है, समय पर नहीं आती है। बुद्धिमान आदमी वो है जो समय पर बुद्धि उसके काम कर जाए। और उन्होंने इनको कुछ किसी ने सिखाया था क्या बालक नचिकेता को कि ऐसा मांगना चाहिए, इस क्रम से मांगना चाहिए, ये भी नहीं सिखाया था। ये जो क्रम है ना, उनके होने का ढंग है ये। आज बालक नचिकेता का व्यक्तित्व, स्वाभाविक व्यक्तित्व, कोई सिखाया हुआ नहीं है पहले ये वर मांगना चाहिए फिर वो मांग, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक व्यक्तित्व है, बिल्कुल सरलता। ये जो नचिकेता का जीवन है ना, बिल्कुल सहज और सरल है, और वो स्वाभाविक रूप से व्यक्त हो रहे हैं, जो हैं वो स्वाभाविक रूप से व्यक्त हो रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता के लिए मांगा, शांत सुमनसा यथा स्यात्, मेरे पिताजी शांत सुमन हो जाए, वीतमन्यु गौतमो माफी मृत्यो हो। और एक बड़ी गहरी बात इन्होंने मांगी जो आदि गुरु शंकराचार्य जी इसका अर्थ करते हैं, माम अभिवदेत, माम प्रतीत, मैं जब आपके द्वारा भेजा जाऊं तो मेरे पिताजी मेरे को पहचान ले, माम प्रतीत और माम अभिवदेत, मेरे से वो बात भी करे। तो आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें मांग रहे हैं ये एक वर में है कि अनेक वर में है? और आगे उन्होंने ये भी कहा कि एतत्त्रयाणाम प्रथमो वर, ऐसा बोला कि नहीं? एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, ये पहला वर मांगता हूं, और इस पहले वर में क्या क्या मांगा? शांत सुमनसा, मेरे पिताजी शांत सुमन हो, उनका क्रोध शांत हो जाए। अरे बड़ी ऊंची बात मांगी उन्होंने, इसे इस शांत सुमनसा यथा स्यात में अपने पिता के लिए मोक्ष ही मांग लिया उन्होंने। वीत मन्यु विगत मन्यु, क्रोधादि विकार उनके शांत हो जाए, उनका मन शांत हो जाए, समाधि की अवस्था मांग लिया अपने पिता के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके द्वारा भेजा भी जाऊं, अर्थात यही हुआ ना, मैं जब पिता के सामने जाऊं तो वो मेरे को पहचान ले, बात करे। मतलब ये भी मांगा कि आप मुझे वापस भी कर दो, और ये भी मांगा कि वो मेरे से प्रेम करे, पहचाने। तो ये एक वर में है कि अनेक वर में है? एक ही वर में, लेकिन बड़ी गहरी बात है। एक मैं आपको दृष्टांत सुना देता हूं। एक बार एक 100 साल की वृद्धा भगवती की प्रार्थना करती है, और उन्होंने भगवती से मांग लिया, भगवती ने कहा मांगो क्या चाहिए, लेकिन एक वर, हाँ आपको जो मांगना है मांगो, केवल एक एक चीज मांग लेना। अब वो गरीब थी बेचारी, झोपड़ी में रहती थी, और वो तो इतनी मरणासन वृद्धावस्था, तो उन्होंने बड़ी गजब की चीज मांगी। उन्होंने कहा कि मैं 25वें माले पर बैठकर पोतों के साथ सोने के कटोरे में खीर खाना चाहती हूं। अब एक ही बार है ना, वार तो एक ही है। अब 20वें माले पर सोने के कटोरे में और पोतों पोतों के साथ खीर खाना चाहती हूँ। एक ही वर में उसने समृद्धि भी मांगी, पोते पर पोते भी मांग लिए और अपनी उम्र भी मांग ली एक ही वर में। और यहां बालक नचिकेता की भी कितनी बुद्धिमत्ता है, एक ही वर में उन्होंने सब कुछ मांग लिया है। आप इसको यदि एक वाक्य में करना चाहते हैं तो एक वाक्य में आप ऐसा कीजिए, पहले वर में उन्होंने मांगा कि आपके द्वारा जब पिता के पास में जाऊं तो मेरे पिता शांत सुमनस वीतमन्यु भाव से मेरे को पहचान ले। बस 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 एक ही वर में आज इतने बुद्धिमत्ता से। और यहां अभिवदेत और माम प्रतीत का भगवान शंकराचार्य जी ने अर्थ किया है प्रतिभिज्ञायत। आपके वेदांत में एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है प्रतिभिज्ञा, ये जगह जगह पर आता है, आप जानते होंगे इसका अर्थ। एक होता है अभिज्ञा प्रत्यक्ष और दूसरा प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष। जो वस्तु का सर्वप्रथम ज्ञान होता है उसको अभिज्ञा प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो द्वितीय क्षणावच्छेदेन जो प्रत्यक्ष है उसी वस्तु का उसको प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे इस समय आप जो मुझे देख रहे हैं, ज्ञान हो रहा है आपको, तो ये कौन सा ज्ञान है? ये प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष है कि अभिज्ञा प्रत्यक्ष है? लेकिन ये अभिज्ञा नहीं है, ये है ना, ये बहुत गहरी बात है। हम लोग इसको बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं सोच पाते हैं। आप जो मुझे देख रहे हैं ये प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष है। प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष और अभिज्ञा प्रत्यक्ष में अंतर है। अभिज्ञा प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रथम प्रथम जो ज्ञान है, आपने मुझे पहली बार देखा था पहली बार, और इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हुआ और पहली बार आपने देखा कि ये स्वामी जी हैं, वो जो ज्ञान था ना, वो ज्ञान था आपका अभिज्ञा प्रत्यक्ष। लेकिन जब आपने मुझे दूसरी बार दूसरे दिन देखा तो आपको क्या ज्ञान हुआ कि बोले कई कल वाली तो है ये, अभी आप जो मुझे देख रहे हैं आपके देखने के साथ आपके संस्कार भी तो जुड़े हैं। आप जब यहां आए तो मुझे देखते ही क्या आपको संदेह हुआ क्या कि ये कल के ही स्वामी जी हैं कि आज के हैं? कोई संदेह नहीं ना। और मेरे नाम में भी कोई संदेह हुआ? कोई संदेह नहीं। क्यों नहीं हुआ? आपको ऐसा लगा क्या कि नए नए लग रहे हैं? नहीं लगा, कल के ही हैं। माने आप दूसरे उसी व्यक्ति को जब दोबारा देखते हैं तो वहां आपको पहले के संस्कार उसमें सम्मिलित होकर के ज्ञान होता है, वही है ये। माने कोई जरूरत नहीं है कि आप बार बार ये बोले सोयम, लेकिन ज्ञान की धारा वही होती है। ये प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष का लक्षण है, जिस ज्ञान में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो और पूर्व संस्कार भी जिस ज्ञान के साथ जुड़े हुए हो उसको बोलते हैं प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष। और जिसमें केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो उसको बोलते हैं अभिज्ञा प्रत्यक्ष। जैसे आप पहली बार मुझे देख रहे थे, वहां संस्कार थे क्या? नहीं थे, केवल केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष था, वो अभिज्ञा प्रत्यक्ष। और जैसे मुझे आपने दूसरे क्षण देखा, अच्छा जब आपने मुझे 7:30 बजे देखा पहली बार, तो 7:30 बजे का जो ज्ञान है वो अभिज्ञा प्रत्यक्ष। और फिर 7:32 मिनट पर आपने देखा, वो कौन सा ज्ञान था? वो प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष है। अरे दूसरी क्षण, वो तो 2-3 मिनट तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं मैं। आप जैसे 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 ज्ञान की धारा आगे बढ़ती जाती है, वो सारा ज्ञान जो है ना प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष के अंतर्गत है। अपने को लगता है कि ऐसे ये देख रहा हूं तो ये अभिज्ञा है, और जहां सोयम देव दत्ता वहां बोलते हैं तब जाके प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं है। आज यहां भगवान भाष्यकार कह रहे हैं प्रतिभिज्ञा एता, जब मैं उनके सामने जाऊं तो कोई अनजान न बन जाए, कोई भूत प्रेत न समझ ले। क्योंकि आप जब आप भूत प्रेत समझेंगे तो वहां ये भूत थोड़ी होगा कि यही मेरा बेटा है, ऐसा ज्ञान नहीं होगा ना। प्रतिभिज्ञा का अर्थ होता है यहां मेरे पिता को ये ज्ञान हो जाए कि यही वही है, वही जो मेरा बेटा जो गोद में बैठ करके मुझे बोल रहा था कस्मै माम दास्यसि, वही बेटा मेरा है। और ये ज्ञान होने के बाद फिर सारे गुणधर्म उसमें आ जाएंगे, अद्वैत होगा, अभेद होगा, जो पहले था वही आज है, तीन चार दिन के बाद भी जो आया है वो मेरा बेटा है। और वो भूल जाए कि मरा था गया था। और यहां एक पूछने का और एक रहस्य है, जब तीन दिन हुए तो तीन दिन तक प्रतीक्षा तो नहीं की होगी किसी ने, बालक नचिकेता सूक्ष्म शरीर से चले गए तो उनका शरीर अभी थोड़ी यहां पड़ा हुआ है, वो तो दाह संस्कार हो गया। और जब दोबारा वहां से भेजेंगे आचार्य यम तो कौन से शरीर से भेजेंगे, वो सूक्ष्म शरीर से भेजेंगे कि स्थूल शरीर से भेजेंगे। उस मांग में ये भी एक मांग छिपी हुई है कि आप जब भेजो तो आप अपने संकल्प से स्थूल शरीरधारी जैसा पहले था वैसा ही बना के भेजो, ये भी मांग उसमें छिपी हुई है। और वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान यम, जो चाहे आप कर सकते हैं, माने स्थूल शरीर से मैं नहीं तो सूक्ष्म शरीर से क्या मतलब है, जब सूक्ष्म शरीर से वहां जाएंगे तो वहां सूक्ष्म शरीर तो कुछ होता ही नहीं, वहां जाके सूक्ष्म शरीर से क्या करेंगे, वो सूक्ष्म शरीर तो पहली बार दिखता ही नहीं, इसलिए तो उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। माने आपके द्वारा स्थूल शरीरधारी बनकर वहां जाऊं तो मेरे पिताजी हो सकता है कि मेरा बेटा तो मर गया और उसका दाह संस्कार भी हो गया, और ये कौन आ गया अभी, ये तो भूत प्रेत होगा या कोई दूसरा होगा, और वो मेरी उपेक्षा न कर दे, वो पहचान ले वही है मेरा बेटा और यम ने इनको भेजा है, ये उनको पूर्ण बोध हो जाए। एक ही वर में उन्होंने बहुत सारी चीजें मांगी, एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम ऋणे, इन तीनों में मैं पहला वर मांगता हूं। ये पहला जो श्लोक है ना, वो ये कठोपनिषद कोई सामान्य उपनिषद है, और अक्सर ना इस प्रथम वल्ली को हम यूं टरका देते हैं, प्रथम वल्ली को हम यूं ऐसे सरका देते हैं, वो लोग बोलते हैं प्रथम वल्ली में क्या रखा है, और वो झट से एक दो दिन में द्वितीय वल्ली में जाके वेदांत शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको प्रथम वल्ली यदि समझ में नचिकेता समझ में नहीं आए तो आपको आचार्य यम कहां से समझ में आएगा, अर्जुन को समझना है पहले, उसके बाद फिर दूसरा अध्याय, पहला अध्याय अर्जुन गीता का अध्याय है, पहला अध्याय जो है ना अर्जुन गीता है, और अर्जुन गीता के बाद आती है भगवत गीता, पहले पूर्व मीमांसा फिर उत्तर मीमांसा, पहले शिष्य की भूमिका फिर गुरु के उपदेश। और ये नचिकेता का जो जीवन है ना, आपको जीवन को बहुत बारीकाई से देखना है, ये साधक क्या होता है, कैसा होता है, कैसा सजग है, नैतिक चरित्र क्या है, ये सारे दैवी गुण उसमें क्या है, ये आपको कहां समझ में आएगा, आपको द्वितीय वल्ली में समझ में आएगा। शिष्य कैसा होना चाहिए ये आपको द्वितीय वल्ली में समझ में नहीं आएगा, वहां आपको समझ में आएगा गुरु कैसा होता है। आप जब दूसरे अध्याय में जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि भगवान क्या है, गुरु कैसा होता है, ये समझ में आता है। और पहले अध्याय में शिष्य कैसा होता है, आप पहले अध्याय को देखना, जब मैं पहले अध्याय को छाप रहा था विषाद योग, काफी बड़ी पुस्तक है, करीब 105 पृष्ठ की है, तो लोगों ने मुझे बोला कि अरे बोले दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं, तीसरे से शुरू करते हैं। मैंने एक बार गीता अष्टादशा किया था मां आनंद में आश्रम हरिद्वार में, तो वहां पहला अध्याय मुझे बड़ा सुंदर लगा, सुना कैसेट उसकी, और फिर उसको मैंने बुक बना दी। तो लोगों ने कहा कि आपने पहला क्यों बनाया, आपने दूसरा बनाते तीसरा बनाते, बोले क्या रखा पहले में, कोई पढ़ने की चीज है, पहले अध्याय में भगवान शंकराचार्य जी भाष्य नहीं लिखा है। हमने कहा कि भगवान शंकराचार्य जी ने दूसरे अध्याय से इसलिए शुरू किया क्योंकि उनको तो ज्ञान गीता का रहस्य बताना था, उनको ये बताना था ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, उनको तो केवल भगवान के ऊपर बताना है, उनको नहीं बताना है अर्जुन कैसा है। लेकिन आपको यदि समझना है सचमुच साधक कैसा होना है, तो आपको फिर अर्जुन को अच्छी तरह से समझना चाहिए अर्जुन कैसा है। और आप पहले अध्याय में देखना, एक एक उसका वक्तव्य, उसका एक एक श्लोक, आप उसके अंतकरण में, श्लोक के अंतकरण में, श्लोक का भी अंतकरण होता है। ऐसा मान लीजिए कि श्लोक एक विग्रह है और उसके अंदर उसका भी अंतकरण है, और वो अंतकरण आप पकड़ लीजिए बस, क्या है इसका भाव, आपको समझ में आएगा अर्जुन क्या है, तब आपको समझ में आएगा कृष्ण क्या है। अब यहां बालक नचिकेता अंतकरण है, ये शिष्य का अंतकरण, शिष्य कैसा होना चाहिए ये आपको मालूम पड़ता है बालक नचिकेता। और वो सजग, एकदम सजगता पूर्वक, और इतना छोटा होता हुआ भी, और पहले ही वर में उन्होंने बहुत सारी चीजें मांग ली हा? लेकिन इस मांग की मूल में स्वयं का स्वार्थ नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान देने जैसा है। क्योंकि स्वयं का स्वार्थ होता तो आज वो मर के वहां तक पहुंचते ही नहीं। आज कैसे पहुंचे, स्वयं इच्छा से पहुंचे हैं, नहीं तो पिता के वचन को वो तिरस्कृत कर देते हैं और वो नहीं आते। उनको क्या था, कोई दबाव था क्या, वे स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं केवल पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए। इसलिए वहां यहां मांग में उनकी स्वयं की कोई वासना नहीं, स्वार्थ नहीं है। और मांग क्यों रहे, केवल पिता के लिए मांग रहे, ध्यान देना है। इनके मांग में केवल पितृ प्रेम है, पिता के लिए जो कर्तव्य है वो है। क्योंकि पुत्र का अर्थ यही है, आप श्रवण करते हैं हमेशा, पुम नामकात नरकात त्रायते इति पुत्रः। शास्त्र में आया है कोई नरक है और उस नरक से अपने पिता को जो बचा लेता है उसको बोलते हैं पुत्र। अरे यही तो नरक है और क्या, दुख विषाद अशांति ये सारे क्या नरक से कम है। और पुत्र जब होता है तो अपने पिता के दुख का हरण कर लेता है। जब पिता को दुख हो और वो पुत्र जाके हरण कर ले, वही नरक से उसको रक्षण करना है। आप भूखे और आपको लाकर रोटी खिला दी, आप प्यासे हैं आपको पानी पिला दिया, आप विषाद में दुख में हैं और आकर के आपको सांत्वना दी और उन्हें कहा कि अब ये काम मैं करूंगा। इसलिए आपको कहा है, एक बड़ा सुंदर शब्द है तात, ये आया हुआ था, मैं बोलते बोलते भूल गया, कस्मे तात माम दास्य से है ना, कस्मे तात, तात शब्द का प्रयोग हुआ, हे तात मुझे आप किसको दान कर रहे हैं। ये तात शब्द है ना, ये सबके लिए, जहां बहुत प्रेम से संबोधन करना होता है वहां तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। हे तात, पुत्र के लिए भी और ये पिता के लिए भी, चाचा के लिए भी, सबके लिए, जहां आपको बहुत प्रेम का उद्बोधन दे रहा हूं। और अक्सर ये शब्द अपने पुत्र के लिए आता है और ये तनु विस्तारे धातु से ये तात शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है तनोति आत्मनः आत्म रूपेण विस्तारयति इति तात। तात माने जो स्वयं ही स्वयं के रूप में विस्तृत है, उसको बोलते हैं तात। पुत्र माने क्या है, पुत्र माने आपका ही स्वरूप पुत्र के रूप में विस्तार को प्राप्त हो गया है। पुत्र माने आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही पुत्र रूप में प्रकट हो गए हैं, बस बस यही, इसी को बोलते हैं तात। माने आप में और पुत्र में कोई अंतर नहीं है, जैसे डाल और शाखा, शाखा प्रशाखा तना, इसका कोई भेद है क्या, अरे एक के ऊपर ये, तने के ऊपर शाखा बनी, शाखा के ऊपर प्रशाखा, उसके ऊपर पत्ता, उसके ऊपर फूल, एक ही चीजें हैं। ऐसे ये पुत्र परंपरा, पितृ परंपरा जो है एक है, बिल्कुल एक है। और इसीलिए यहां अपने पुत्र के लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत अभिन्न आत्मा ऐसा समझ लो, आप मेरे अत्यंत अभिन्न हैं। इसीलिए अपने शास्त्रों में क्या कहा, जब पिता वृद्ध हो जाता है और जब उसकी आंखें कम देखने लगती हैं, तो पिता, प्राचीन पिता, आज का नहीं, और प्राचीन पुत्र जो वैदिक संस्कृति में पलते थे, आर्य संस्कृति में, क्या सोचते थे, ये बात भी समझने जैसी है। प्राचीन समय में पिता जब वृद्ध होने लगता था, जब उसके हाथ पैर चलना बंद हो जाते थे, तो वो क्या सोचता था? सोचता नहीं था, वो अपने भीतर से अनुभूति करता था। जब उसकी आंखें कम होने लगती तो क्या दुखी होता था? क्या नहीं, वो क्या सोचता? वो मंत्र है, ऐसे वेदों के मंत्र हैं। वो कहता कि बेटा अब मैं इन आंखों से नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारे आंखों से देखूंगा। हाँ, और जब आपके कान जब चले जाते तो वो मंत्र भी है, ऐसे मंत्र भी हैं। अब मैं इन कानों से नहीं सुनूंगा, अब मेरे कान कितने हैं? चार। और पुराने जमाने में तो बहुत होते थे, अभी तो हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो भी नहीं, अब एक आ गया, माइनस में है हम लोग अब, है ना। हिंदू धर्म बड़े माइनस में आ रहा है, दो के एक हो गया तो आप प्लस में कि माइनस में है? अरे दो के दो तो कम से कम बराबर तो बने रहे, दो के तीन तो प्लस में आ गए, और दो का एक तो धीरे धीरे आप कम होते जा रहे हैं। और बात सही है, आप देखना, एक बात है मंच पर कहने की नहीं है, ये तो अंदर से समझने की बात है। अन्य धर्मों में वहां कोई प्लानिंग नहीं है, और आपके धर्म में जबरदस्त प्लानिंग है, जबरदस्त प्लानिंग। यहां तो राम जी की परंपरा चलती है, कृष्ण की तो नहीं चलती है। शादी विवाह में राम जी की परंपरा है, एक पत्नी व्रत है। हाँ, ये राम जी की बात है, एक ही शादी होना है। कृष्ण की परंपरा में होती तो बात ठीक थी भाई। राम की परंपरा क्यों देवेंद्र? राम जी की परंपरा में, कृष्ण की परंपरा में, राम जी की परंपरा, और इसमें माइनस में है। पहले जमाने में 5 के 25 ऐसा आशीर्वाद दिया जाता, 1 के 2, 2 के 5, 5 के 25। तो यहां जब उसकी आंखें चलने लगती, चली जाने लगती, तो पिता अनुभव करता था अब मैं पुत्र की आंखों से देखूंगा। और जब टांगे जवाब देती तो वहां मंत्र पढ़ता था, वो अब मैं अपने पुत्र के पैरों से चलूंगा। और जब पुत्र चलता था तो ऐसा अनुभव करता था कि वो मैं ही चल रहा हूं। और जब पुत्र जब दुनिया देखता, बड़ा बड़ा काम करने लगता, तो ऐसा अनुभव करता कि मैं ही कर रहा हूं। माने अपने पुत्र के साथ वो एक रूप हो जाता था। और जब मरने लगता था ना आदमी उस समय, तो ऐसा मरता था, मरता ही नहीं था वो। पुराने जमाने में आदमी मरता ही नहीं था, पुराने जमाने में आदमी अपने को पुत्र में सम्मिलित कर देता था बस। हाँ, ऐसे मंत्र हैं, मरते समय के मंत्र हैं। ये हिंदू संस्कृति भी बड़ी अद्भुत है यार। अरे जीवित अवस्था में भी हम लोग मंत्र आज नहीं बोल पाते हैं, और वेदों में मरते समय के मंत्र हैं, मरते समय के भी मंत्र हैं। मरते समय आपको मंत्र बोलना है। और स्विच आनंद पूर्ण, अब मैं अपने इंद्रियों को मैं अपने समर्पित कर रहा हूं अपने पुत्र में।